हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है, अर्थात माह में दो एकादशी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी इसी एकादशी व्रत के महात्म्य को अत्यंत सरल एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं व विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के बाद जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मलावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति के मार्ग में बहुत सी क्रियाओं को किया जाता है जिससे भक्ति में मदद मिलती है। भक्ति का अर्थ है कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग में जो भी सहायक हो उसको स्वीकारना चाहिए। एक मूल सिद्धांत है, जो भी हमें मदद करे, जो क्रिया हमें मदद करे, जो स्थिति हमें मदद करे, उसकी सहायता हमें लेनी चाहिए। भक्ति में जितनी भी चीज़ें अनुकूल हों उनको स्वीकारना चाहिए, और जो प्रतिकूल होती हैं उनको त्यागना चाहिए। भक्ति में अनुकूल चीज़ें क्या क्या हैं? भक्ति में अनुकूल हैं हम जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करते हैं, श्रवण करते हैं। ये सारी चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल हैं, और इनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है व्रतों को या उपवासों को करना, और वो भी विशेष दिवसों पर, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, एकादशी इत्यादि। तो एकादशी के व्रत को क्यों करना चाहिए, एकादशी के व्रत की क्या महानता है, क्या महत्व है, इस पर हम इस श्रृंखला में अब चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो हर एकादशी का महात्म्य पुराणों में दिया गया है, और उसी महात्म्य को भक्ति की दृष्टि से हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। व्रतों की आवश्यकता भक्ति में क्यों है? क्या हम बिना व्रत के, बिना उपवास के, बिना कोई कष्ट लिए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? प्रश्न ये आता है कि भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पिता हैं, और अगर वो हमारे पिता हैं और हमसे प्रेम करते हैं तो फिर क्या वो प्रसन्न होते हैं जब उनके पुत्र, जब उनकी संतानें भूखे रहते हैं या बहुत कष्ट सहते हैं? ये कैसा प्रेम है भगवान का? तो ये मन प्रश्न हमेशा करता रहता है कि कैसे ये हो सकता है कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनकी संतान भूखी बैठी हुई है या बहुत ज्यादा कष्ट ले रही है। तो इसको समझना चाहिए। ये सत्य है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को कष्ट में देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन ये भी सही है कि पिता प्रसन्न होते हैं भक्त का या अपने पुत्र का प्रेम देखकर। भगवान के लिए जब उपवास किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, विशेष करके एकादशी का व्रत, तो ये भगवान को प्रसन्न करता है। कैसे? भगवान हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। तो ये जो तपस्याएं हम जीवन में करते हैं या जो व्रत जीवन में करते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले हम श्री कृष्ण को, भगवान को ये दिखलाते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है। तो भगवान को दिखलाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए व्रतों को किया जाता है। जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं, कई लोग व्रत करते हैं, आमरण अनशन करते हैं राजनीतिक कार्यों से, व्यक्तिगत कार्यों से, और उसके द्वारा वो सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह कोई राजनेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भूखा रहकर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, उसी तरह एक भक्त अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से उपवास करकर थोड़े से शारीरिक कष्ट को लेकर फिर वो भगवान का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए पहला कारण है कि हमें उपवासों को करना चाहिए। दूसरा कारण, क्यों व्रतों को करना चाहिए? थोड़ी बहुत त्याग की भावना हम में आनी चाहिए। इस जगत में रह रह कर हमें भोग करने की आदत पड़ गई है। हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर स्थान में हम केवल भोग करते हैं, अपना भोग ढूंढते हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें कहीं बुलाया जाता है तो हमारे उद्देश्य होता है हमें क्या प्राप्त होगा, या हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उसमें भी भावना यही होती है कि हमें क्या मिलेगा। तो ये जो हमें क्या मिलेगा, ये जो भावना है, ये भोग करने की भावना है कि हमें क्या प्राप्त होना है। तो इसीलिए सारी चीजों में हम केवल क्या मिलेगा इसलिए करते हैं। व्रतों और उपवासों को करकर थोड़ा बहुत इस भावना को त्यागने का प्रयास करना चाहिए कि हर चीज में हमें आनंद मिले, ये सही नहीं है। ये भोग प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है कि केवल अपने आनंद को देखना, भगवान के आनंद को नहीं देखना। जैसे रावण, रावण ने ये सोचा कि सीता देवी उसके भोग के लिए हैं, उसके आनंद के लिए हैं, और इसीलिए उसने सीता का हरण किया। भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना या अपने भोग की वस्तु समझना, ये आसुरी स्वभाव है। हाँ, भगवान ने जितना हमें दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना भगवान ने हमें दिया है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये भोग प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है समाज में कि हर वस्तु से भोग करने का प्रयास व्यक्ति करता है, धन से भोग करने का प्रयास करता है, किसी व्यक्ति से भोग करने का प्रयास करता है, स्थितियों से भोग करने का प्रयास करता है, तो उपवास के द्वारा हम लोग थोड़ा सा इस प्रवृत्ति के बाहर जाते हैं कि हम भोग करने के लिए प्रयास ना करें। तो इसलिए भी उपवास करने चाहिए। तो पहला कारण, हम भगवान को ध्यान, भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं। दूसरा कारण, थोड़ा बहुत भोग प्रवृत्ति से दूर जाने का प्रयास करते हैं तो जिसलिए हमें उपवास कर लेने चाहिए। साथ ही साथ जब हम उपवास करते हैं तो ये हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं इस समय, कोई नियंत्रण नहीं है इंद्रियों पर। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो इंद्रियों के भोग करने की प्रवृत्ति है इसकी तुलना वेग से की गई है। वेग अर्थात इतनी तीव्रता से आता है कि व्यक्ति अधर्म कर बैठता है, पाप कर बैठता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल सारे धर्मशास्त्र जानता था और केवल जानता ही नहीं था, अपने पिता को सहयोग भी करता था धर्म के कारण कार्यों में, साथ ही साथ खुद भी जाकर जंगल से सब चीजें इकट्ठा करना, पिता की सहायता करना, यज्ञ इत्यादि करना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना। लेकिन एक समय केवल जब वो वन में जा रहा था, अजामिल ने एक शूद्र और शूद्राणी को आपस में आलिंगन करते देख लिया। केवल उतने से, हालांकि सारे धर्मशास्त्रों को जानता था लेकिन वो जो वेग था वो इतना तीव्र था कि उस तीव्र वेग को सहन नहीं कर पाया और उसका पतन हो गया। उसने अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा और सारा जीवन उसने अपना अधर्म में बिताया। तो ये वेग हैं, इसीलिए उपवास के द्वारा इन वेगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। विशेष करके उदर का वेग, हम लोगों को खाने की बड़ी इच्छा होती है, अगर भूख लगे तो बहुत हम लोग कहीं भी ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए भोजन, तो ये भी एक बड़ा तीव्र वेग है। तो इस वेग को भी नियंत्रित किया जाता है उपवास के द्वारा। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रण में ना हो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान और भक्ति ना हो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मुक्ति क्या है, भागवत में कहा गया है, मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ क्या है कि अपने सारे अन्य रूपों को जो हमने ग्रहण किया हुआ है, आत्मा के रूप में हमारा एक मूल रूप है, हमारा एक स्वरूप है, आदि रूप स्वरूप, अब हम उसको भूले हुए हैं इसीलिए अन्य रूपों को ग्रहण करते हैं। तो मुक्ति का हर अर्थ है अन्य रूपों को त्यागना और अपने स्वरूप में स्थित होना। तो वो कब होता है, जब हमारे पास भक्ति है। भक्ति कब होती है, जब ज्ञान है, और ज्ञान कब आता है, जब इंद्रियां वश में हैं। तो इसीलिए उपवास के द्वारा हम लोग इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो उपवास करने से हम बड़ी सरलता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और ये साथ ही साथ प्रेम का प्रदर्शन भी है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट लेना, ये उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी हैं, अब पति पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है उनके जन्म दिवस पर और उनको एक बहुत अच्छा उपहार देना चाहता है। अब पति को पता चलता है कि यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहाँ वो रह रहा है वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा उपहार मिल रहा है, चाहे कपड़ा हो या इत्यादि, तो वो 150 किलोमीटर दूर जाता है और वहाँ से उपहार लाता है अपनी पत्नी के लिए। अब जब पत्नी को ये पता चलता है कि मेरे पति ने इतना कष्ट लिया 150 किलोमीटर दूर जाना, वहां से लेकर आना, किस लिए, केवल प्रसन्न करने के लिए, तो अब पत्नी को प्रसन्न होना चाहिए या फिर पत्नी को दुखी होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पत्नी को दुखी होना चाहिए कि इतने दूर गए 150 किलोमीटर, लेकिन हृदय में प्रसन्नता भी होगी कि केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना कष्ट उनके पति ने लिया। इसी तरह जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो तो प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए थोड़े बहुत कष्ट अगर लिए जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति प्रसन्न होता है ये देखकर कि कितना कष्ट केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए लिया गया। तो जब हम उपवास करते हैं तो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। अब एकादशी का व्रत जब किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे हम आने वाले सत्रों में इस श्रृंखला में सुनेंगे कि कई स्थानों पर एकादशी के महत्व को दिया, महात्म्य को दिया है और उससे ये भौतिक लाभ होगा, इतना प्राप्त होगा। तो उपवास करने का उद्देश्य क्या है? उपवास करने का उद्देश्य कोई भौतिक लाभ की कामना नहीं होना चाहिए। जैसे राजनेता लोग उपवास करते हैं, समाज के कार्यकर्ता उपवास करते हैं, उनका उद्देश्य है समाज के लिए कुछ चीज़ों को प्राप्त करना, वो अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। पूर्णता क्या है? भगवान की प्रसन्नता। जब हम अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तब कार्यों की पूर्णता होती है, अन्यथा हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं जब तक पूर्ण से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि भगवान पूर्ण है। जैसे कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो जो पूर्ण हैं उनसे जब कार्यों को जोड़ते हैं तब कार्यों में पूर्णता आती है। इसी तरह एकादशी का उपवास भी हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वैसे उपवास शब्द का अर्थ ही यही होता है, उप यानि निकट और वास यानि बैठना या रहना। तो उपवास शब्द का अर्थ क्या है कि हम जिस दिन उपवास करें, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर कोई भी अन्य व्रत हो, उद्देश्य होना चाहिए कि हम कितना भगवान के निकट रह सकते हैं, कितना हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कितना हम भगवान के विषय में श्रवण कर सकते हैं, कितना हम उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम कितना जान सकते हैं। तो सही उपवास ये है। तो जब उपवास करना हो तो केवल भूखा रहना ये उपवास नहीं है, वो तो उपवास का एक अंग है। और भूखा इसलिए रहा जाता है कि ज्यादा समय भोजन पकाने में और उसमें बनाने में, खाने में समय व्यर्थ ना हो, उतना समय बचाकर भगवान की सेवा में हम लगा सकें, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा सकें, इसको उपवास कहते हैं। वैसे जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो भक्ति की दृष्टि से हमें कई और उपवास करने चाहिए। एक उपवास हम लोग करते हैं भोजन से, भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ना हो तो हमें उपवास करना चाहिए निंदा से, कि हम किसी की निंदा नहीं करें। उस दिन प्रण कर लें कि एक दिन एकादशी का है, आज उपवास है, आज किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो हमें व्रत करना चाहिए निंदा से कि हम निंदा नहीं करें। हमें व्रत करना चाहिए भौतिक भोगों से कि आज का एक दिन ज्यादा किसी भोग में नहीं पड़ेंगे। और ऐसे हमें धीरे धीरे व्रत बढ़ाने चाहिए। हम किसी की निंदा नहीं करें, हम ज्यादा भोगों में नहीं पड़ें, हम किसी से द्वेष नहीं करें। तो अगर सही दृष्टि में उपवास भगवान की प्रसन्नता के लिए होना है तो हमें ऐसा उपवास करना चाहिए जहां निंदा ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, हम प्रेम करें, क्योंकि भक्ति का मार्ग है भगवान से प्रेम करना, और वो प्रेम प्रकट होता है अन्य जीवों के प्रेम के द्वारा। जब हम सभी जीवों से प्रेम करना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक है भगवान से भी हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। या फिर कहना चाहिए, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो सभी जीवों से प्रेम होगा, क्योंकि भगवान सभी जीवों के मूल हैं। तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। तो हम व्रत को करें और फिर उसके जो फल हैं उसको भगवान को ही अर्पण कर दें कि ये हमारी तरफ से एक भेंट है प्रेम की आपके लिए। क्योंकि जब व्रत किए जाते हैं तो कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट हमें लेना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास कर लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा भोगों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी उपवासों की अनिवार्यता है। ये अनिवार्य है करना, जिससे हम भोगों से दूर जा सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें और इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो उपवास का सही उद्देश्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति में सहायता मिले, हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपनी भोग प्रवृत्ति को त्यागें। ये उपवास का सही उद्देश्य है। तो इसीलिए एकादशी में अन्य चीजें की जाती हैं। क्या करना चाहिए एकादशी में, जैसे अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, ये इस कारण से है, प्रमुख कारण कि बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। तो इसीलिए एकादशी में अन्न ग्रहण ना करें, बहुत थोड़ा, जैसे अगर हो सके तो हम केवल फल खाकर रह लें। वैसे पूर्व काल में एकादशी का व्रत हर व्यक्ति निर्जल किया करता था, अर्थात बिना जल ग्रहण किए। तो एकादशी का व्रत पहले सब निर्जल करते थे, आज संभव नहीं है, कलयुग बढ़ गया है। तो मान लीजिए एक व्रत का पालन करने का तरीका होता है कि हम निर्जल करें, कोई जल ग्रहण भी नहीं करें, बिल्कुल नहीं, और अगले दिन जब पारण समय होता है उस दिन फिर जल लेकर अपने उपवास को तोड़ें। इसका वर्णन आता है महाभारत में। महाभारत में एक समय द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली दुर्योधन और युधिष्ठिर की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ ढूंढो सारे राज्य में, तुम्हें कोई बहुत सबसे बुरा व्यक्ति मिले उसको पकड़ कर लेकर आओ। और दुर्योधन से कहा कि तुम भी जाओ सारे राज्य में घूमो, जो सबसे अच्छा व्यक्ति मिले उसको पकड़ कर लेकर आओ। तो दोनों चले गए। अब दुर्योधन वापस आए, दुर्योधन के साथ कोई नहीं था। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा, भाई क्या हुआ दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैंने सारा राज्य देखा, सबसे अच्छा एक ही व्यक्ति मिला मुझे। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, कौन? दुर्योधन ने कहा, मैं, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। दूसरी ओर युधिष्ठिर महाराज आए और वे भी बिना किसी को लेकर आए। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुम्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला पूरे राज्य में? उन्होंने कहा, क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि मैंने पूरा राज्य घूमा और मुझे लगा मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैं घूम रहा था, मैंने देखा आज एकादशी है और एक शूद्र कुएं से पानी निकाल रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको देखा कि अरे एकादशी के दिन ये शूद्र पानी निकाल रहा है, मतलब पानी पीने वाला है, तो तुरंत मैंने उसको पकड़ लिया और उसको दंड देना चाहा। लेकिन फिर उसने बताया कि ये जल तो वो अपने पशुओं के लिए निकाल रहा था। तो मेरे जैसा व्यक्ति मैंने कैसे उस पर आरोप लगा दिया, इसीलिए मुझे लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि जो शूद्र भी थे उस समय, वे भी एकादशी का इतनी कड़ाई से पालन करते थे, आज संभव नहीं है। तो इसीलिए हो सके तो निर्जल करना चाहिए, नहीं हो सके तो फिर हमें जल लेकर कर लेना चाहिए, उसको सजल कहते हैं। तो एकादशी सजल कर लेनी चाहिए, वो भी संभव नहीं है तो फिर फल लेकर कर लेना चाहिए, जिसको सफल कहते हैं। निर्जल, सजल, सफल, फल लेकर कर लेना चाहिए। उद्देश्य यह है कि बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। और अगर वो भी नहीं हो सकता, शरीर साथ नहीं देता, तो फिर कुछ ऐसी चीजों को ले लिया जाता है जो उपवास के समय में जिनकी अनुमति है खाने के लिए, तब उसको ले लेना चाहिए। लेकिन मूल भाव ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करें इन सब चीज़ों में और समय ज़्यादा लगाएं भगवान की सेवा में। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट है स्वास्थ्य की दृष्टि से और वो उपवास नहीं कर सकता, तो उसको अनावश्यक अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं और हम हमेशा चिंता कर रहे हैं भोजन की, कब भोजन मिलेगा, कब भोजन मिलेगा। ये तो कोई उपवास नहीं है। उपवास ये है कि हम भोजन कम करें और बहुत ज्यादा चिंतन श्री कृष्ण का करें। तो ये सही दृष्टि में उपवास करने की विधि है। तो ऐसे एकादशी का उपवास करना चाहिए। एकादशी को माधव तिथि कहा गया है, ये भक्ति की जननी है। इसीलिए एकादशी पर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब एकादशी प्रकट हुई थी, भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई और उन्होंने मुर नाम के राक्षस का वध किया। भगवान उस समय निद्रा में थे, उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा, तो उन्होंने पूछा, तो एकादशी ने बताया कि आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूं। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आज के दिन प्रकट हुई हो, एकादशी है, 11वां दिन, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और जो कोई भी इस व्रत को इस दिन पर व्रत करेगा वो मेरी भक्ति निश्चित प्राप्त करेगा। तो इसीलिए एकादशी के दिन पर हमें व्रत रखने चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कष्ट होता है तो फिर ठीक है, बहुत कम तपस्या करनी चाहिए और भगवान का स्मरण ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरह से भक्ति में भी उपवास की उपयोगिता है, अनिवार्यता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कम से कम एकादशी व्रत का पालन करें। तो अब आगे आने वाले सत्रों में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक एकादशी की, कि कौन सी एकादशी का क्या महात्म्य दिया गया है और उसका हमारी भक्ति में क्या उपयोग है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।